आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है? कब्र के अजाब से महफूज रहने वाले खुश नसीब। सच बताएं, हम में से कोई एक भी ऐसा है जिसका दिल ना चाहता हो कि अल्लाह बस कब्र से पास हो जाए? हजरत उस्मान गनी की तरह क्या हमें भी कब्र से डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता है। रात दिन बस एक ही फिक्र है कि अल्लाह पहला इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाए, अगले पे तो थाम लेगा। तो आज हम देखेंगे वो कौन खुशकिस्मत हैं जिनको कब्र का अजाब नहीं होगा। पहले मैं अपने भी और आपके लिए दुआ करती हूँ कि हम सब को अल्लाह उनमें शामिल कर ले। ये तो दुआ है ना, लेकिन हुक्म अल्लाह और रसूल का है। दुआएं भी उसी वक्त काम आती हैं जब उसके साथ वो कोशिशें भी हों और वो प्री रिक्विजिट्स यानी वो शराइत भी पूरी की जाएं। तो मैं एक दुआ और भी कर लेती हूँ कि अल्लाह अगर हम में से कोई इस काबिल नहीं है कि वो कब्र के अजाब से महफूज रहे, तो आज के इस लेक्चर के बाद उसको उस अमल के लिए कोशिश करने वालों में शामिल कर ले। और इसके बरक्स अगर कोई ऐसा अमल है ज़िंदगी में जो वो करते हुए हम इस कब्र के अजाब को दावत दे रहे होते हैं, तो अल्लाह तो अपनी रहमत से खुद ब खुद हमारा दिल उससे पलट दे। आमीन। दिल से कहिए, अपने लिए, अपने माँ बाप, भाई बहनों और बाकियों के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ईमान बिल गैब हमारी सीरीज़ है, अनदेखी दुनिया पर ईमान लाना, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सूरत बकरा के बिल्कुल आगाज़ में ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी हुदल्लिल मुत्तकीन ये कहते हुए अल्लाह ताला ने आपको मुझे बता दिया कि मुत्तकी कौन होते हैं। अल्लज़ीना यूमिनून बिल गैब, बस वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। इस पे पीछे से बहुत से लेक्चर गुजर चुके हैं, तो आज हम इसके अंदर से जो ईमान बिल गैब का एक पार्ट क्या है, ईमान बिल आखिरा, अनदेखी हकीकतें आखिरत के मुतल्लिक, उसमें से कब्र का टॉपिक चल रहा है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो क्या है, कब्र के अजाब और फितने से महफूज रहने वाले खुश नसीब। आपने दुनिया से किसी को जाते देखा है? देखा है ना, हम सब ने देखा है। देखा कम भी हो और अल्लाह हमारे प्यारों को और हमारे करीबियों को आफियत दे, लेकिन सुना तो बहुत सारे लोगों को है ना। कुछ लोगों को बड़ी आराम से मौत आ जाती है, सोते सोगे, सुना होगा आपने, रात को सोए बिस्तर पे, जब उनकी आंख खुलेगी तो कब्र में होंगे। लेकिन कुछ एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं, कई उसमें बेड रिडन होते हैं। आपको भी याद आएगा, मुझे भी याद है, हमारी फैमिली में एक बुज़ुर्ग खातून थी, मेरा ख्याल है वो 15 से 20 साल का बिटवीन कोई अरसा था, इतनी देर वो पैरालाइज्ड रहीं। जब वो पैरालाइज्ड रहीं और ज़ाहिर है कि स्टिल आधी बॉडी काम कर रही, हाफ ऑफ दी बॉडी इज़ वर्किंग हाफ इज़ नॉट, तो बस लोग ये सोचने लगते हैं कि कोई गुनाह है, जान ही नहीं निकल रही। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि ऊपर वालों की जान नहीं छूट रही। हकीकत है कि जब हमारे प्यारे हमारे काम कर रहे होते हैं, वो हमें मोहब्बत दे रहे होते हैं, फिजिकल काम करते हैं, इमोशनली हमें अपलिफ्ट करते हैं ना, तो उस वक़्त उनके साथ ताल्लुक और तरह का होता है। लेकिन जब वही माँ बाप, और ख़ास तौर पे वो माँ बाप, सास ससुर, नाना नानी, दादा दादी, यानी कुछ ऐसे रंग रूप बन जाते हैं जिसमें वो हकीकत में बोझ बन जाते हैं। मुंह भर के तो कोई नहीं कहता दुआ करो अम्मा फौत हो जाए, कोई नहीं कहता दुआ करो अब्बू फौत हो जाए। कभी सुना ये जुमला भी, कितना ऑकवर्ड लग रहा होगा मेरा। हाँ, एक जुमला दर पर्दा बोलते हैं, अल्लाह अम्मा पे रहम कर दे, दुआ करिए अल्लाह रहमत कर दे अपनी, ये जो कहते हैं ना रहमत कर दे, तो असल में हम ये कह रहे होते हैं कि इनको रहमत के फरिश्ते लेने आए और प्यार से ले जाए, ये हकीकत है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ बड़ी आराम की नरम, वो खुशबू की शीशी खुली और रूह निकल गई वाली कैफियत जो हम हदीसों में मोमिन की मौत की पढ़ते हैं। और इसी सीरीज़ में हमने 4 लेक्चर मौत पे किए हैं, मौत एक अटल हकीकत, खात्मा सू उससे बचने की दुआएं, खात्मा बिल खैर, और चौथा मौत का सफ़र। ये आपका सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे, जर्नी ऑफ सोल, रूह का सफ़र, मरने के बाद रूहें वापस आती हैं कि नहीं, जुमेरात को आती हैं कि नहीं, उनकी पसंद के खाने बनाएं तो आती हैं कि नहीं, सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इस सीरीज़ में आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन अब मैं वापस आती हूँ कि कुछ का दुनिया में तकलीफ़ और अजियत से मरना और कुछ का आसानी से मरना, क्या ये इस बात की दलील है? क्या ये इस बात की दलील है कि जिसकी आसानी से निकल गई वो तो बड़ा खुशनस्बत है ही कुछ नहीं था जो का माफ़ होता और वो चला गया, और देखो पता नहीं क्या गुनाह किया है, जान ही नहीं निकल रही। यानी लंबी बीमारी या निज़ा की सख्ती क्या बुरे अंजाम की अलामत है? नहीं, ये हम कॉन्सेप्ट सुन चुके हैं पीछे सीरीज़ में, जिन्होंने सुना है आप भी सुन लीजिएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अचानक मौत मोमिन के लिए अतिया है, तोहफा गिफ्ट, और अचानक मौत काफिर के लिए सज़ा है। कैसे? मोमिन तैयार बैठा है, आप पहले से तैयार है, एकदम गाड़ी दरवाजे पे आ गई, आ जाओ शुक्र करेंगे। तैयार होने वाला बैठता नहीं है, फिर जल्दी होती है उसको। और मोमिन ने तो सब कुछ पैक किया होता है, वो तो बड़ा इंतज़ार करके इस दुनिया में एक ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह इस दुनिया में रहता है। कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब व नवाबिर इस सबीर, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम ट्रांजिट पैसेंजर हो, राह चलते मुसाफिर हो। यहाँ से अगर आपको लंदन जाना है तो दुबई एयरपोर्ट पे बैठे हुए एक पैसेंजर की तरह हो। दिल तो चाहता है हैंड कैरी भी ना हो, एम्प्टी हैंडेड हो, डायरेक्ट फ्लाइट हो, लंबे लंबे पॉजेस किसी को अच्छे नहीं लगते। तो मोमिन तो इस दुनिया में पूरा अपने हर चीज़ को तोल ताल के बैठा होता है, जबकि काफिर सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। कुरान कहता है युल ही हिमुल अमल, 14वें पारे की पहली आयत, रुबमा यवदुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक वो वक्त आने वाला है जब वो कहेंगे काश हम मुसलमान होते। अल्लाह फरमाते ज़र हम छोड़ो इनको, इनके खेल तमाशों में डाल दो। वो युल ही हिमुल अमल, लंबी आरज़ू इनको रखें। तो दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि मोमिन बिलीवर मौत के लिए तैयार होता है बल्कि मुंतज़िर होता है, क्योंकि मोमिन की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन उसकी मौत का दिन होगा। जैसे ज़िंदगी में बचपन से हमारे कल्चर में बच्चियों को शादी का ख्वाब दिखाया जाता है, हालात और माहौल भी दिखाता है। पहले बच्चियाँ गुड़िया की शादी करती थी, अब कोई नहीं करती। खैर वो तो अब जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ें। तो शादी का दिन बड़े अरमानों का दिन होता है। और मैं एक बात साइड पे कह दूँ, आपकी अपनी शादी होने वाली है अगर, जो कि अभी नहीं हुई, या आपके बच्चों की होने वाली है, या आपके पोते नवासों की, एक जुमला मेरा याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सोचा जाने वाला दिन, सबसे ज़्यादा नेमतों वाला दिन, अल्लाह की नाफरमानी का दिन ना बनाइएगा। यही शादी हॉल्स होते हैं। आज यहाँ से कुरान की आवाज़ जा रही है, अगर यहाँ शैतान की आवाज़ें आएंगी और उन आवाज़ों के बीच में हर वो काम होगा जिससे शैतान खुश होगा, तो बरकत नहीं आएगी। हर दूसरी तीसरी शादी डिस्टर्ब्ड है। मैं पूरे फगर से कह रही हूँ ये, मैंने दूसरी तीसरी आपका दिल रखने के लिए बोला। अब मैं जब वश में बात करती हूँ ना, तो अब मैं बोलती हूँ हर दूसरी शादी। मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ आपको, यहाँ अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसे नहीं होंगे। 3-5 शादियाँ निभ जाती हैं, छठी डिस्टर्ब होगी, उसकी बहुत सारी वजूहात को पीछे कर दें, वो तरबियतें, वो बर्दाश्त, वो बराबरी, वो सब छोड़ दें। एक वजह हिडन सोर्स है कि नहीं, वो है कि आज हमारी शादियों में बरकत नहीं रही, रहमत नहीं रही, नाफरमानी आ गई। तो खुशी में नाफरमानी नहीं करनी, एक पल की खुशी कल कब्र का साम बन गई तो क्या होगा? आज की खुशी एक मस्ती अगर जहन्नुम का कोई कोयला बन गई। अल्लाह सूरह यूनुस में कहता है या यूहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अन्फुसिकुम, और इसी मौजू पे लेक्चर अभी अमेरिका की सीरीज में यूएसए ट्रिप में आपको दिखेगा, तुम्हारी सरकशी तुम्हारे खिलाफ। शादियों और खुशियों के मौके पे सरकश होते हैं ना, सर खींचना, कश सिगरेट के कश लगाते हैं ना, कशी यूँ होती है, यूँ देखेंगे होगा, हु केयर्स, देखा जाएगा, मौज मस्ती। ये वक्त बार बार नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो मेरी इन सारी बातों को दिल पे लीजिएगा, सिर्फ एक लेक्चर सुनकर या मैं आपको एक लेक्चर देकर नहीं बचेंगे, जब तक कि ये सब कुछ हमारे अमल में नहीं ढलेगा। तो वापस आते हैं अपनी बात पे, मोमिन मौत के लिए तैयार होता है, इसलिए अचानक आ जाए अल्लाह की तरफ से, और अगर तकलीफ़ में गुजर गई तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करता है। दो चीज़ें हो रही होती हैं मोमिन के साथ, रफ़ाए दरजात या कफ़ारात सय्यात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निज़ा की सख्ती देखने के बाद मैंने ये बात सोचनी छोड़ दी कि मौत की सख्तियाँ गुनाहों का कफ़ारा होती हैं, क्योंकि नबी तो मासूम अनिल ख़ता थे। व यग़फ़िरु लक अल्लाहु ज़म्बक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, तो अल्लाह के नबी और नेक लोगों को अगर आप तकलीफ़ में देखें तो ये क्या होता है कि वो एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन अल्लाह उनको वो ऊपर के मुकाम देना चाहता है, तो क्या होता है, फिर अल्लाह उन पे मुश्किलात डालता है। अब मैंने ये सारी बात को आपके लिए आज कब्र के साथ क्यों छेड़ा है, ये मेरे अगले जुमले लिख के जाइएगा दिल में। जिंदगी में जब हम किसी को बीमार देखते हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, रोज डायलिसिस हो रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, डॉक्टरों के फेरे, बेड रिडन, अपनी ही गंदगी साफ नहीं कर रहे, हम सब देख रहे होते हैं, 10 लोग हैं हेल्प करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, औलाद भी जो भी काम करेगी। अब हुआ क्या कि वो तकलीफों से अल्लाह ने कफ़ारा सय्यात कर दिया, गुनाहों से पाक। और हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मोमिन को मरने से पहले ऐसे पाक करता है कि फिर उसके जिस्म पर कोई गुनाह नहीं होता। दूसरे लफ्जों में आपको एक जुमला बोलूं, मौत एक ईमान वाले की आखिरी तकलीफ है। अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा को क्या कहा था जब अपने बाप की तकलीफ देख रही थी, तो क्या कहा कि बेटा आज के बाद तेरे बाबा को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब जो काम दुनिया में हुआ और हम सब उस पर मदद करने वाले थे, अगर यहाँ ना हो और बंदा दुनिया से जाए या बुला लिया जाए और उसके दामन पे गुनाहों के धब्बे हों, कुछ हकूकुल्ला में कमी और कुछ हकूकलेबात में कमी, हलाल हराम का मसला, तो फिर वो कब्र में जाके धुलता है। कब्र का अजाब क्या है, बचा खुचा मैल कुचैल जो ईमान वाले पे रह गया, और अल्लाह उसको मैदाने हशर में बुलाने से पहले पाक करना चाहता है, ये कब्र का अजाब है। और काफिर के लिए क्या है, ये वो अगली जिंदगी की तमहीद है। तो कब्र का अजाब दो जुमलों में लिख लें, मोमिन के लिए फाइनल क्लीनिंग, आप कहते हैं ना क्लिनजिंग करवा लो, फाइनल टचेस, टोनिंग, ये कर लो वो कर लो, यानी जो धब्बे रह गए वो वहां चले गए। और डिसबिलीवर के लिए क्या है, क्या हो तुम्हें जरा एक झलकी दिखाएं आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो क्या चाहेंगे हम, सबसे पहली बात देखिए दुनिया में ही अपने हिसाब पाक कीजिए। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, और वो एक शेर भी है ना कि देखा है जो मैंने वो औरों को भी दिखला दे। पहले दौर के सलफ सालेहीन और अल्लामा इकबाल जैसे शायर और हमारे ख़ानदानों के बड़े बुजुर्ग अपनी औलादों को नसीहत किया करते थे, और उन नसीहतों में एक नसीहत क्या थी कि तुम्हें अगर पता चल जाए कि तुम्हारे इस अमल की सजा तुम्हें क़यामत के दिन या कब्र में क्या मिलनी है, तो तुम्हारी लज्जत ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब्र में मरने वालों के साथ क्या होता है, तो तुम अपने मुर्दे दफनाने छोड़ दो, बिस्तरों पे लज्जत लेना छोड़ दो। तो बात इतनी मेरी क्लियर, कब्र का अजाब क्या है, अगली जिंदगी के बीच में एक माइलस्टोन है। बास नेक लोगों को कब्र में ले जाकर भी कोई छोटी मोटी चीज़ है तो पाक किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जब क़यामत के बाद उठेंगे तो उन पे कोई धब्बा नहीं होगा। और जो बुरे काम करते थे, कुछ लोगों के वो बुरे काम कब्र के अजाब से अल्हम्दुलिल्लाह धुल जाएंगे, यानी जिसको कह सकते हैं आप कि अल्लाह ताला हर बंदे के साथ मुख्तलिफ मामला करेगा। लेकिन एक खुशकिस्मत कैटेगरी जिस पे आज हम बात करने लगे हैं, और ये मैं बात करूंगी, ये मेरी बात है कि आपकी है, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है, पर वो क्या है, कौन खुश नसीब कब्र के अजाब से बचेंगे। आप कहते हैं जल्दी को वजीफा बता दें, एक टांग पे खड़े होके 500 दफा कोई ऐसा वजीफा है कुरान की आयत है कर लेंगे ना तो हम बच जाएंगे। गलत, छूट। अच्छा आयतुल कुर्सी पढ़ लें हर नमाज के बाद, तो हदीस है ना कि उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत है। सुना हुआ ना, ये हम सबका परसेप्शन है कि है हैजर्डली छटपटे में अचानक कोई जमीन पे गिरा कागज देखा, ये आयत पढ़ लो कब्र के अजाब से बच जाओगे, चलो जी पढ़ना शुरू कर दो, कब्र पे नीम का बूटा लगा दो पढ़ लो। सब गलत है। इवन आयतुल कुर्सी भी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी आपको नहीं बचाएगी जब तक के आपका अकीदा ठीक ना हो। और दूसरी बात, बामल जिंदगी गुजार रहे हैं फिर कमियां रह गई, हमारी तो नेकियों में भी गलतियां हैं, हम तो जो नेकियों के काम करते हैं उसमें भी बहुत कुछ है। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालेहात, जो लोग ईमान लाएं और अमल साले करें फिर उसके बाद अल्लाह कहता है अकीदा खराब है आप जाइए पैदल हज कर आइए, बेकार है। मैं गलत नहीं कह रही, देखिए ये अकीदे का मौजू है, इसमें मैं 1% भी ऑफ नहीं हो सकती। आज हमारी बरेसगीर पाक व हिंद की आवाम को ये कोई नहीं पता, शब रात आती है तो पता नहीं क्या करके हलवा पूड़ियाँ पका के खिला देंगे, रजब आएगा कुंडे खिला देंगे, रबी अव्वल आएगा मिलाद रचाएंगे, रमजान आएगा तो खूब ही बातें करेंगे, सताइसियों में जागेंगे और दिल करता कि उम्र ही कर लें। ये सब नेकी है, शर्त एक है, नंबर एक वो बंदे का अकीदा ठीक हो। देखिए अकीदा अकद, आप कार्ड्स पे पहले लिखा पढ़ते थे अकदे मसनूना, अकद कहते निकाह को ना, अकद अकीदा के गिरा लगना, उकदत मिल लिसानी पढ़ते हैं ना, बल्कि पढ़ी ले रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उकदत मिल लिसानी यफ़क़हु क़ौली। तो अकीदा अकद अकीदा ये एक ही है। आप अपने मालिक के बारे में गुमान ही ठीक नहीं है, आप उसको पूरी तरह जानते ही नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि वो फिर अगली बातें कैसे। ये तो बिल्कुल ऐसी है कि दाखला लिए बगैर कोई घर बैठ के किताबें पढ़नी शुरू हो जाए, कोई दुनिया का निकम्मे से कॉलेज उसको डिग्री देगा। तो सबसे ज्यादा जो आपके मेरे लिए आज अमल की बात निकली, अपने और अपने बच्चों के अकायद पे गद नजर डाली है, अकीदे पे। और आप सबको भी कहूंगी अकीदा खराब है तो आपका यहाँ आके मेरे साथ बैठना, मोहब्बत करना, दर्द सुनना कोई फायदा नहीं होगा। वो कहते ना कि अल्लाह के आगे हाथ जोड़ के माफी मांग के कहूंगी कोई इधर आकर बाद में हाथ न चूमे, ये सर पे हाथ फेर दे, ये सब शख्सियत परस्ती में जाता है। आपको किसी इंसान से फायदा होता है ना उसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह जैसे दुनिया में उसके पर्दे रखे ना आखिरत में भी रख दें। जिससे नफा मिलता है फायदा होता है उससे बंदे को मोहब्बत होती है, चाहे वो हमारी गाड़ी है या फोन है या हमारा चूल्हा तवा है, जो चीज फायदा देगी। लेकिन आप उन लोगों के बारे में कभी इस तरह के नाजायज जुमले ना बोला करें, आप तो जन्नती आप तो हमें भी ले जाना, हमें ना बोलना, किसको पता है उधर नफसी नफसी पड़ी होगी उस दिन। और कोई मेरे बारे में इधर बैठ के गुमान ना करे कि मैं जन्नती हूँ और मैं बहुत नेक हूँ, अच्छी बात कर लेना और बात है, नेक होना और बात है, बंदा नमाजी हो सकता है जरूरी नहीं वो नेक, नेकी तो बहुत बड़ी चीज है। तो लिहाजा आइए अब हम कुरान और सुन्नत से देखते हैं वो कौन खुश नसीब हैं जिनका अकीदा भी ठीक है और मजमूई तौर पे वो बाअमल मुसलमान भी हैं। ये दो शरायत हैं, इसके बाद फिर आपकी बातें जाती हैं। तो सबसे पहला गिरोह अल्लाह के रास्ते में शहादत पाने वाला, जिसको अल्लाह ताला अपने रास्ते की शहादत नसीब कर दे उसका हिसाब नहीं होगा। हदीस सुन लीजिए, मिकदाम बिन मादी रदी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के हाँ शहीद के लिए 6 एजाजात हैं, ऑनर्स यानी खूबियां आप कह सकते हैं उनके मामले में कुछ भी। और ये रिवायत कहाँ है, तिरमिजी 1663 नंबर है, आप में जो स्टूडेंट्स हैं वो लिखा करें नंबर्स भी। और इब्ने माजा में ये रिवायत 2799 पे है और मुस्नद अहमद में ये पेज नंबर 131 पे है जिल्द नंबर 4 में। हदीस सुनिए अब, 7 किस्म की खैर शहीद को मिलती है। नंबर एक, पहले ही लम्हे मरते ही जान निकलते ही उसकी मग़फ़रत फरमा दी जाती है और इसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है, कौन है हम में से जो ना चाहे। दूसरा, उसे अजाब कब्र से महफूज कर दिया जाता है, कब्र के अजाब से। आगे दलील नंबर 3, क़यामत की मुसीबतों में वो मामून रहता है, यानी अमन में रहता है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं आती। नंबर 4, इसके सर पर इज्जत और वक़ार का ताज रखा जाता है, इसको हदीस में ताजुल किरामा कहते हैं, किरामत इज्जत, जिसका सिर्फ एक, ओनली वन याकूत, याकूत किस रंग का पत्थर होता है, गार्नेट ब्राउन, जिसका सिर्फ एक याकूत ही दुनिया और इसमें जो कुछ है सबसे कीमती है। अपने आप को तसव्वुर में लाएं, बच्चों को लाएं, बेटों को, शोहर को, भाइयों को, जहन में लाइए ज़रा, दिल नहीं चाहता कि उनको मिले ये एहसास। चलें अगली भी चीज़ें लिख ले, फिर इस पे बात करते हैं। नंबर 5, गोरी गोरी बड़ी बड़ी आँखों वाली 72, यानी 72 हूरों से उसकी शादी कर दी जाती है। और 6th एजाज क्या है कि इसके 70 यानी 70 रिश्तेदारों के बारे में इसकी शिफात कबूल की जाती है। अल्लाह अकबर। जब ये बात हो रही थी तो एक सहाबी हैं राशिद बिन साद रदी अल्लाह अन्हो, उनसे रिवायत है कि अल्लाह के नबी के सहाबी ने बयान किया कि एक आदमी ने आकर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, यानी तमाम मुसलमानों को कब्र में आजमाया जाता है, लेकिन शहीद को क्यों नहीं आजमाया जाता? आप भी सोच रहे होंगे ना, क्यों भाई, क्या सोने की छड़ी है उसके हाथ में, क्या वजह है? तो आपने फरमाया, शहीद के लिए तो राहे जिहाद में सर पर चमकती हुई तलवारों की आजमाइश ही काफ़ी है। ये निसाई की रिवायत है 2055, यानी शहीद तो दुनिया में ही अपने सच्चे होने की गवाही दे चुका। ज़रा सा इस पे बात कीजिए। आज तो लोग लफ्ज़ शहीद, उससे भी पहला लफ्ज़ जिहाद, मिजाहिद, जंग, इसी से डरते हैं। किसी भी, मैं मुल्क में थी, एक टीचर थी, और भी लोग थे, कहने कि मैंने एक सवाल करना है जी, कह रही कि हमने संडे स्कूल के बच्चों को एक दुआ सिखाई, नया लिबास पहनते हुए किसी को देखो तो क्या दुआ दो, इल्बिस जदीदन इश हमीदन व मुत शहीदन। बच्चों ने दुआ याद की, घर गए, सुनाई सुनी, एक माँ आ गई कंप्लेन करने, ऑफिस में शिकायत आ गई, क्या आपकी टीचर बच्चों के साथ मरने मारने की बातें क्यों करती हैं, ये मुत का लफ्ज़ क्या है, ये शहीद के, बस दो लफ्ज़ ठीक है, इल्बिस जदीदन इश हमीदन, ये माँ बाप हैं। और ये रियल स्टोरी किसी ने आप जैसे हॉल में बैठकर पूछा और सुनाया कि आज तो हम अपने बच्चों को लफ्ज़ मौत, जिहाद और शहादत से भी दूर रखते हैं। कितने मुल्कों में ये लफ्ज़ बैन है? इंटेलिजेंसेस आपके इस लफ्ज़ को AI के थ्रू नोट करती हैं और फिर वो कहती हैं कि जी ये बंदा कोई ऐसी बातें कर रहा है, ये जुमले बोलने मना हैं। मुझे बताइए, ये शहादत कहाँ से आएगी? अब आप कहते हैं क्या करें, आपने कब अपने बच्चे को आखिरी बार दुआ दी थी, अल्लाह बेटा तुझे शहीद करे? पूछिए, आप पूछिए अपने आप से, छोड़ दें किसी को, आप तो अपने प्यारे से पाकिस्तान में बैठी हुई हैं और ये लेक्चर याद दहानी कि यहाँ से हो रहा है, लाहौर से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है। आप सारी पाकिस्तानी मुसलमान माएँ, और आप में से शायद एक भी रिवॉर्ट नहीं होंगी, मतलब यह कि आपके अम्मी अबू भी मुसलमान हैं, नाना नानी भी होंगे, देखना आपने कब आखिरी दफ़ा अपने बच्चे को और बच्ची को कहा, अल्लाह तुम्हें इस शहादत की मौत है। और एक और बात पूछूं, तैयारी क्या की है इसके लिए? आपके दिल में जो अपने बच्चों के अरमान है, जहाँ बैठे अभी लिटमस टेस्ट है, अभी रिजल्ट भी साथ ही आएगा, रिपोर्ट के लिए आपको अब तो वेट नहीं करना पड़ेगा और किसी डॉक्टर को दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, अभी आपका दिल बताएगा कि आप कितने पानी में, क्योंकि इस्तफ़्ते कलबक वलो अफतूक, आपने दिल से फतवा लो चाहे लोग फतवे दे दें। और वो सवाल क्या, सच बोलिएगा अपने आप से, मुझे नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, अपने आप से पूछिए, आपके दिल में जो अपने बच्चों के लिए हर वक्त दुआएं मचलती रहती हैं वो क्या है? एक टॉपिक था दुआ की ताकत, तो उसमें हमने बताया था खुद को पहचानो अपनी दुआओं के आईने में। हम अपने बच्चों के बारे में जो गम रखते हैं, जो दुआएं करते हैं, और जो अरमान रखते हैं ना, असल में हम वो होते हैं, क्योंकि बंदा अपनी औलाद के मामले में बड़ा ही बखील है। इन्ना अमवालुकुम औलादुकुम फितना। सबसे ज्यादा जिंदगी में बंदा किसी को खैर देना चाहता है तो औलाद, किसी से वो जल्बे नफा कहते हैं खैर देने को, नफे को खींच लाए। काबे किए पर्दे को थाम थाम के औरतें रो रही थी, अल्लाह मेरे बच्चे को रिस्क दे, अल्लाह मेरे दे, उम्रे हज होते ही इसलिए जरा मैं अब यहाँ से बच्चों के रिश्ते मांग लाऊं, यानी पाकिस्तान में रह के तो नहीं मिला, तो जरा जाके सऊदी अरब में अल्लाह को कहूँ कि मेरे बच्चे का रिश्ता करा दे, मेरी बच्ची का, उनको औलाद मिल जाए, उनको ये मिले। जिस दिल के खाने में अंदर के वो आर्टिकल और जो भी अंदर की तहें है ना, जब उसमें से कसक उठती है बच्चे की औलाद नहीं है तो उसकी औलाद के लिए, बेटी नमाजी नहीं है तो उसकी नमाज के लिए वैसे ही निकलती है, बेपर्द के लिए पर्दा निकलता है, शहादत उससे ऊपर है। ये हम है, ऐसे थोड़ी शहादत मिल जाती है, ये कोई राह जाता सौदा, ये नहीं मिलती ऐसे। अल्लाह ने कब्र के अजाब से बचाना है। आप इमेजिन तो कीजिए ना कि कब्र का अजाब खत्म, आपको पता है कि शहीद का बरजख जन्नत में होता है, कौन कहता है? वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम। अल्लाह ने कहा वो अल्लाह के पास जिंदा हैं, युरदकून भी हैं, रोजियां भी दिए जाते हैं, उनको पहले से गए हुए लोगों की और बाद वालों की खुशखबरियां भी मिलती हैं, ये बड़ा मारफत का दर्जा है। तो शहादत का शौक उसको होगा जो जिंदगी में नंबर एक खुद अपने रिचुअल्स को पूरा करेगा। 5 वक्त की मस्जिद की नमाज, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है अमन के दिनों का। कौन सा जिहाद है ये? ये जिहाद बिन नफ्स है, ये जिहाद बिन शैतान है, ये जिहाद बिन नींद है। किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार, नींद तुम्हें प्यारी है। जो माँ अपने बच्चे को फजर के लिए नहीं उठा के भेज सकी, उसका बेटा कभी भी मैदान जंग में नहीं जाएगा। और हाल क्या देखे, मस्जिद के बाहर बैठे बच्चे अंदर नहीं जाते, मस्जिद के अंदर काम करने वाले वर्कर्स नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद, अल्लाह को कोई ऐसे बंदों का शौक भी नहीं है। दो चीजें, अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों पे गुजारते हुए, फराइज पाबंदी से अदा हो, और जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी हो, उसको शहादत मिलेगी। चाहे घर के बिस्तर पे आप सोएंगे फिर भी आपको शहादत मिलेगी, बिलीव मी। आप इल्म हासिल करेंगे फिर भी शहादत मिलेगी। आज का टॉपिक शहादत नहीं है, कब्र का अजाब है जिसमें शहीद के खूबी दी है। कभी अलग से भी इस पे सुन लीजिएगा बात कि शहादत के दर्जे क्या हैं। तो फिर आप और मैं क्या करें? पहली बात देखिए, जिंदगियों को सीधा कीजिए, सोने जागने को सीधा कीजिए। 5 वक्त की नमाज मर्द मस्जिद में पढ़ेंगे, बेटे हों के मर्द हों के शौहर हों के बच्चे हों, और आप खवातीन बेटियां जो घर की खवातीन है अव्वल वक्त में मिलके पढ़ लें, इससे ना आपका नेविगेटर सही हो जाएगा। बाकी बातें इसके बाद, पूरी जिंदगी आपकी नमाज के गिर्द। वली कुल्लिन विच्छुन हुआ मुवल्ली हा, अल्लाह कहते तुम सब का एक विज है, फोकल पॉइंट। जैसे एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी माँ का फोकल पॉइंट होता है, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाती, इसी तरह से आपकी जिंदगी का फोकल पॉइंट नमाज हो और फिर अल्लाह का दीन, तो अल्लाह करे कि आपको मुझे ये तड़प लग जाए। वरना जो फजर के लिए नहीं उठते, कल उस वक्त पे दुश्मन भी आ गया तो नहीं उठेंगे। और एक बड़ी इमोशनल बात बताऊं, एकदम ना नए बंदे को कहिएगा, लेकिन काम बड़ी करती है ये बात। एक बाप जो खुद नमाजी थे और बच्चे पक्के नमाजी नहीं थे, खास तौर पे फजर सबसे बोझल, तो उठाते थे आवाज देते थे तो कोई उठ गया, किसी ने और ही कंबल तान लिया। एक दिन अपने बच्चों को कहते हैं, मुझे एक फिक्र है, कभी आधी रात को मुझे हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए और मैं तुम्हें आवाज दूं, तुम तो नहीं उठोगे? दिल को पड़ती है बात, बस यही जवाब। इस तरह फिक्र लग जाए, आगे चलिए नंबर दो, अल्लाह मुझे भी शहादत की मौत दे और आपको भी दे, हमारी नस्लों को शहीद करे। और शहादत के दर्जे हैं, आप जितने सच्चे होंगे देखिए अल्लाह आपको उतनी अच्छी मौत देगा, ये लिख के रख लें। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं खात्मा बिल खैर के टॉपिक में, जैसी जिंदगी वैसी मौत। हदीस है, जहाँ जिस हालात में तुम जियोगे उसी में मौत आएगी, और जिस पे मौत आएगी कल वैसे ही उठोगे, ऐसे ही है ना। आप घर से अगर VIP लाउंज का टिकट लेते हैं, यानी आप बिजनेस क्लास लेते हैं, तो सारे मराहल में आपको वही डील करते हैं, आप इधर आ जाइए जी, ये आपका काउंटर है, अच्छा आप अंदर जाइए, अच्छा वो लाउंज है वहाँ 1 घंटा गुजार ले, अच्छा फिर VIP लाउंज वाले जो है, जो VIP जो बिजनेस क्लास है वो पहले उठे, उनकी सीटें, वो सारे मराहल एंड तक चलते हैं, कभी सफ़र में आजमा लें। अल्लाह हमें VIP जिंदगियाँ गुजारने वाला बना दे, हम थर्ड क्लास में बैठे हुए मुसलमान हैं, कोई मौजज़ा हो जाएगा तो अल्लाह में आगे ले आएगा इंशाल्लाह, लगे रहिए। नंबर 2, कौन लोग कब्र के अजाब से महफूज हैं? अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए फौत होने वाला। फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले शख्स के अमल का सवाब ख़त्म कर दिया जाता है, यानी उसका अकाउंट क्लोज सीज, सिवाय इसके जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए मरे, इसके अमल का अजर इसे ता कयामत मिलता रहता है, और वो फितनाए कब्र से महफूज रहता है। जी ये रिवायत तिर्मिजी में 1621। चलिए देखिए ज़रा, आपका दिल चाहता है कि आपके अकाउंट में मनी डलती ही रहे, आपके सामने भी और आपके पीछे से भी, जब कभी अकाउंट चेक करें तो वो तो भरा हो, कोई ये चाहता है कि उसके अकाउंट से पैसे निकले हों, तो ये किसका होता है? जो अल्लाह के रस्तों में निकलता है। एक होता है पहरा, हम लोग पहरे के साथ चौकीदार को सोचते हैं, गार्डमैन जी, अल्हम्दुलिल्लाह असल लफ्ज़ तो पहरे का यही है, लेकिन जो अल्लाह ने सूरत तौबा में आयत इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन वाली आयत की अगली आयत में कहा है, जन्नत का सौदा, कि जो लोग अल्लाह के रस्ते में और बिके में उनकी खूबियों में खूबी के वो क्या करते हैं, यो हाफिजून हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदों की हिफाजत करते हैं। ये क्या है? देखिए एक है वो बाहर बैठा सिक्योरिटी मैन जो इस हॉल में किसी को आने नहीं देगा, चेक करेगा, एक फौजी होते हैं जो मुल्क के बॉर्डर्स में होते हैं कोई दुश्मन ना आए, एक वो है जो दीन की चौकीदारी करता है, कोई बिदत घुसने ना पाए, कोई वीक नरेशन अंदर ना आने जाए, उलमाए कराम मुहद्दिसीन, आज भी ऐसे लाखों गुमनाम लोग हैं, उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई उनके सब्सक्राइबर्स नहीं, उनको कोई यूट्यूब से लाखों डॉलर नहीं मिलते, लेकिन वो दीन के चौकीदार बन के बैठे हुए। पहले लोग कमरों में बंद बैठकर अपने अपने मदरसों में इल्म लेते थे, जो उस्ताद सिखाता वही ठीक लगता, इतना है ही नहीं था इससे बाहर का दौरा, आज एक गूगल शेख और यूट्यूब पे एक लिंक की जगह 10 लिंक खुलते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। एक बच्ची पर्दा करती थी, किसी ने उसको रोका टोका, कहने कि मैं रिसर्च करूंगी, कहाँ, गूगल पे जाके लिखा क्या चेहरे का पर्दा है, रिसर्च की, उसके बाद क्या हुआ, वो हिजाब भी छोड़ दिया, क्योंकि उधर तो नॉन मुस्लिम्स के भी व्यू डले होते हैं, आपको क्या पता लिखने वाला कौन है, तो अगर खैर फैलती है ना तो शर भी फैलता है। मैं और आप क्या करें इसमें सवाल, अपनी ज़िंदगी का एक खुलासा बना लें, अल्लाह मैं मरते दम तक तेरे दीन की चौकीदारी करूँगी, ना ख्वाहिशों की वजह से पीछे हटूँगी, ना हटने दूँगी, ना किसी की रग़बत ना किसी का शौक़, वला तखाफून अल्लाह मतलाय, सूरत मायदा में अल्लाह ने जो मोमिनीन की सिफात दी ना उसमें एक है, किसी मलामत आले की मलामत से भी नहीं डरते, तो आप अपनी ऐसी ज़िंदगी बनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बचाएगा। और जब भी मरने वाले के सवाब के ख़त्म ना होने की बात आती है ना, तो उस्माने गनी, इस ट्रिप में हमने अभी ये रिसेंटली 2 वीक पहले हमने एक उम्रा ट्रिप किया है, उस्माने गनी के उस बाग में गए, आज भी उसकी खजूरें उतरती हैं, उसका फल बिकता है, और वो पैसा हरम की तौसी में लगता है, सारी बस वालों ने उतर के ज़्यादा खजूरें ले ली कि हम हज़रत उस्मान के अकाउंट में पैसे डालें। ये कीजिए आप अल्लाह के रास्ते में निकलिए, देखिए तो सही, आप नहीं दूसरे ही बहुत होते हैं आपको अमीर बनाने में, एक पैनी आपके पर्स में ना हो लेकिन आपके सब कुछ होगा, क्यों, ये अल्लाह का वादा है, मन कान लिल्लाही कान अल्लाह लहू। तीसरे पे चलते हैं, कब्र के अजाब से जो बचेंगे, पेट की बीमारी में फौत होने वाला। अब्दुल्ला बिन यस्सार रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, हज़रत सुलेमान बिन सर्द रदी अल्लाह अन्हु और खालिद बिन अरफता रदी अल्लाह अन्हु आए, तो लोगों ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो पेट की बीमारी से फौत हुआ था। ये सुनकर वो दोनों ख्वाहिश करने लगे कि काश वो इस आदमी के जनाजे में शरीक होते। फिर इनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, क्या मैं यक्तुलुहु बतनुहु लम युअज़्ज़ब फी कब्रिही, जिसे पेट की कोई बीमारी कत्ल कर दे इसे कब्र का अजाब नहीं होगा। तो दूसरे ने जवाब में कहा, हाँ कहा था। ये निसाई की रिवायत है 2054 नंबर की। तो कभी आपकी फैमिलीज में कोई पेट की बीमारी से मरा हो तो बस शहीद है, वो दो शर्तें साथ हैं, अकीदा दुरुस्त और डे टू डे लाइफ में अमल सालेह और अल्लाह से उम्मीद रखे। अब कोई चोर, कोई जानी, कोई मुशरिक, कोई किसी भी गलत चीज़ में गया हुआ बंदा अगर इन बीमारियों से मर जाए तो जवाब आपको मिल गया। अल्लाह ताला पहले अकीदे की दुरुस्ती करे। आज के सेशन के बाद सबसे ज़्यादा अपने ज़ोर जिस चीज़ पे लगाना है वो क्या है, अकायद की दुरुस्तगी इंशाल्लाह। नंबर 4, जुमे के दिन या जुमे की रात को फौत होने वाला मुसलमान ये भी कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। ये तिरमिजी की रिवायत है 1074 नंबर की। अब यहाँ फिर वही बात आ गई ना कि क्या हर बंदा जो जुमे को फौत हो रहा है उस पर ये बात आती है, कोड वर्ड याद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें वो सारी चीज़ें जमा करके दे जिसकी वजह से हम किसी न किसी तरह से कब्र के अजाब से बच जाएं। और अगर कब्र का अजाब ना हो ना आगे मौजे ही मौजे हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है ना हज और उमरे पे जाएं। अब यहाँ से तो मेरे लिए 4 से 5 घंटे की फ़्लाइट है ना। अमेरिका से जो लोग आते हैं 16 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर आते हैं, 20 की कई कनेक्शंस हैं। अब जाने को दिल बहुत सारों का करता है लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं हम बैठ नहीं सकते इतनी देर, पाँव सूज जाते हैं या कुछ और। अब वो रास्ते की सऊबत निकाल दें तो किसका दिल नहीं करेगा कि हरम में बैठा हो, लेकिन वो मुश्किलात रोक लेती है ना। बिल्कुल इसी तरह से हम में से हर एक का दिल करता है कि क़यामत का दिन आए और अल्लाह ताला से मुलाकात हो और जन्नत मिले, लेकिन बीच में ये जो कब्र वाला मामला है ये घबराता है। तो जब कब्र का मामला अच्छा हो गया, और आपको पता है कि जो रेगुलर सफ़र करते हैं ना हम जैसे, हम तो सबसे चीपेस्ट क्लास में सफ़र करते हैं हमेशा, खुद से कभी महंगी टिकट नहीं ली, कभी एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं लिया, और जो भी अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा होता है कि यानी ये अब आपके फ़ायदे की चीज़ें तो नहीं है लेकिन होता है, यानी कभी ऐसा भी होता है कि जो दिन आप चूज़ कर रहे होते हैं ना उसे फर्स्ट क्लास की टिकट सस्ती होती है और इकोनॉमी महंगी होती है। कोई तुक्का होता है ऐसा, कभी एयरलाइंस में एवरी डे टिकट चेंज होते हैं ना। कभी आपको यानी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिल जाए और आप हाई क्लास में चले जाएं, बिलीव मी दिल करता है सफ़र ही ना ख़त्म हो। इससे नहीं, पिछले साल 2 साल पहले जब हम लोगों ने पेरिस से सफ़र किया था, कुछ ऐसा टिकट का इशू था कि मेरे हस्बैंड की टिकट अमेरिका से इशू हुई हुई थी, वो अमेरिका से आ रहे थे, रास्ते में हम दोनों ने पेरिस से मिलना था, इनकी टिकट उसकी कंटिन्यूएशन थी। अब मुझे भी उसी में ही जाना है, उसी फ्लाइट में जाना है, मेरी मजबूरी थी। अब हुआ क्या कि उस दिन दूसरी इकोनॉमी की टिकट अवेलेबल नहीं थी और फर्स्ट क्लास की एक टिकट मिली तो ली हमने, वो कितने की मिली मुझे नहीं याद लेकिन मजबूरी थी जाना ही उसमें। अब आप सोचें, जो बंदा सोचे भी ना कि हम अलग बैठे हैं और खाएं भी अलग, मैं हूँ उधर तो मैं इनको क्या कह रही हूँ, देखना मैं आपको आगे बैठा दूंगी आप, मैं पीछे चली जाऊंगी। मैंने पहली सखावत तो इनके साथ पहले ही कह दी कि नहीं नहीं आप फर्स्ट क्लास पे बैठना मैं उसमें जाऊंगी। फिर दूसरी मैंने ने कहा कि देखना खाली सीटें होती हैं ना, मैं उनको कहूंगी कि इनको भी बुला लें। अच्छा तीसरी मैंने कहा कि नहीं कुछ भी होगा ना मैं नहीं रहूंगी आगे मैं पीछे आ जाऊंगी। अब जो कुछ एंड पे पता क्या हुआ, उन्होंने चाहती भी नहीं इनको मारने दी, इधर मैं आगे थी वो पीछे थे। सबको शुरू में कहते हैं ना अपनी अपनी जगहों पे बैठे, अब मैं थी और वो जो मेरी सीट थी। पहली दफा दिल किया था सफर खत्म ना हो, लेट के बैठे हैं, बैठे नहीं गाड़ी है ना वो अंदर चली जाती है सीट खोल लो, फिर जाते ही वो पूछते हैं आप कौन सा जूस पियेंगे, पीछे वालों को तो वो अपनी मर्जी का खिलाते हैं ना, फर्स्ट क्लास वालों को वो पूछते हैं मैम क्या चाहिए, मेन्यू कार्ड आता है, जूस चाहिए, जो मांगो मिलता जाएगा, वालकुम मा तद्दउन, जो मांगोगे मा यश्तहुन, मेरे गले से वो अटक अटक जाए। मैंने एक दो बार कोशिश की ये आगे आ जाए मैं पीछे चली जाऊँ, इनके साथ पूरा जहाज फुल था, तभी तो मुझे मिली नहीं पीछे सीट, मैं आगे थी ये पीछे थे। उस दिन फिर मुझे अपनी वो कही हुई मिसाल बड़ी दफा याद आई, जो अल्लाह कहते हैं कि सुम्मल हकना बिहिम, हम उनको मिला देंगे उनकी औलादों से, उनके माँ बाप से। एक फ्लाइट में रहते वालों को कोई जुगाड़ लगाकर पीछे से आगे ले आओ, पीछे आगे चले जाओ, लेकिन जो फ्लाइट में बैठा ही नहीं उसको कौन लाएगा। तो कभी कभी ये चीज़ें आपको सिखा जाती है कि जो आप करेंगे वही भरेंगे, कोई नहीं काम आता। तो आज कोशिश करें। आगे चलिए, नेक्स्ट नंबर 5 है ये, कसरत से सूरत मुल्क की तिलावत करने वाला। और इसकी दलील हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है रिवायत, और ये सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है, यानी मोस्ट ऑथेंटिक रिवायत है आज के दौर के हिसाब से। 1140 अब्दुल्ला बिन मसूद रावी हैं, फरमाते हैं, सूरतुन तबारक हियल मानियतु मिन अज़ाबिल कब्र। सूरत तबारुक, ये सूरह मुल्क का एक नाम है, अजाब कब्र से रोकने वाली है। अब आप और मैं इन 5 में से कहीं भी हो जाए दुआ कीजिए, और अगर हम इसमें नहीं कर रहे, क्या कहते हैं उसको, डिजर्व नहीं कर रहे, कोई कमी है या कुछ है कुछ नहीं, तो फिर अगला काम क्या करें, अजाब कब्र से पनाह मांगे। कुछ चीज़ें दुआओं से पूरी होंगी। तो आइए ज़रा नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत हमारे फ़ायदे के, मेरे लिए हमारे लिए यही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम इन 5 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फिट होते हैं। अगर होते हैं तो कोई ना कोई रुकावट है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अजाब कब्र से पनाह मांगा करते थे, और अपने सहाबा को भी ताकीद करते थे। एक रिवायत है अबू सईद खुदरी, यानी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से एक बहुत तवील रिवायत बयान करते हैं, और ये सही मुस्लिम में है 2867। क्या कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नजार के एक बाग में एक खच्चर पर जा रहे थे, हम भी आपके साथ थे। अचानक आपका खच्चर बिदका और करीब था कि आपको गिरा देता। जहाँ खच्चर बिदका वहाँ 5, 6 या 4 कब्रें थीं। आपने दरियाफ़त फरमाया, इन कब्र वालों के बारे में कोई शख्स जानता है? एक आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ। तो आपने पूछा, ये लोग कब मरे थे? इस आदमी ने अर्ज़ किया, शिर्क के ज़माने में। आपने इरशाद फरमाया, लोग कब्रों में आजमाए जाते हैं। अगर मुझे ये खदशा ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह के हजूर दुआ करता कि वो तुम्हें भी अजाबे कब्र सुना दे जिस तरह के मैं सुनता हूँ। यानी वो आवाज़ें, वो चीखो पुकार, शोर मचाना। फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अल्लाह ताला से जहन्नम के अजाब की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, हम जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। फिर आपने फरमाया, अल्लाह ताला से कब्र के अजाब की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, हम जाहरी और पोशीदा फितनों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आपने फरमाया, फितने दज्जाल से बचाव के लिए अल्लाह की पनाह मांगो। लोगों ने कहा, हम फितने दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सही मुस्लिम की रिवायत 2867 क्या बता रही है कि दुआ मांगनी चाहिए। अपने लफ्जों में मांगिए, अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री। लेकिन आइए हम एक दुआ सीखते हैं। बाज़ रिवायात से हमें मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कब्र के अजाब से पनाह के लिए ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्री व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व मिन फितनतिल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरम। जी, ये रिवायत है बुखारी में 832 और मुस्लिम में 589। तर्जमा क्या है, या अल्लाह मैं तुझसे कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ, और मैं तुझसे मौत और हयात के फितने से पनाह मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे गुनाहों और कर्ज के बोझ से पनाह मांगता हूँ। अब तो आपने पढ़ी ना ऐसे, अब इसको मांगिए, अपने लिए मांगिए। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين جزاكم الله خير.